समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अनिता आनंद के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। अनिता, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अपने सुनने वालों को बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं ना, वो होने लगता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए ना, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज अनिता और मैं स्टूडियो में आने से पहले बात कर रहे थे कि नवीन, अगर आज बारिश हो जाए दिल्ली में तो कैसा हो। और देखिए, आज झमाझम बारिश हो रही है पूरी दिल्ली में। यहां से लेकर स्टूडियो में आए हैं तब भी भीगते हुए आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये दिन भर दिल्ली वासियों के लिए तो कम से कम बेहद खूबसूरत बना रहे, बादल छाए रहे, बारिश होती रहे और इस उमस वाली गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए, है ना अनिता?
एब्सोल्युटली। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we bring you the latest in national international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 7th of July. And now, quote of the day: success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill. And now let's begin with the headlines, Naveen.
तो अनिता की बात का ख्याल रखिएगा, चर्चिल साहब ने जो कहा था उसे आज दिन भर आप याद करके रखिएगा और देखिएगा कि सक्सेस बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। हालांकि सक्सेस ने कल भारतीय खिलाड़ियों के बहुत कदम चूमे हैं, स्वर्णिम दिन कल का रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ब्रिक्स की। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। ब्रिक्स नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद, आतंकवाद को संरक्षण और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति सुनिश्चित करने और इससे निपटने में दोहरे मानदंड को खारिज करने का आग्रह किया गया।
Prime Minister Narendra Modi has said that there should be no hesitation in imposing sanctions against terrorists. He said victims and supporters of terrorism cannot be weighed on the same scale. Addressing the session on peace and security at the BRICS summit in Brazil, Mr. Modi said terrorism has emerged as the most serious challenge to the humanity today. He said the terrorist attack in Pahalgam on 22nd of April was a direct attack on the soul, identity and dignity of India. The Prime Minister said if any country supports terrorism directly or indirectly, it will have to pay the price for it. He said BRICS member countries must speak out as a group in one voice against terrorism and its supporters. Mr. Modi said condemnation of terrorism must be our principle, not a mere convenience. He said India firmly believes that no matter how difficult the circumstances, the path of peace is the only option for the welfare of humanity. The Prime Minister said war and violence have no place for us. He said the development of humanity is possible only in a peaceful and secure environment. Mr. Modi said BRICS has a very important role in fulfilling this objective. Prime Minister Narendra Modi today participated in the outreach session on strengthening multilateralism, economic financial affairs and artificial intelligence, along with BRICS members, partners and outreach invitees at the 17th BRICS summit. In his address, Mr. Modi emphasized BRICS as a catalyst for global cooperation and multipolar worlds. He urged for demand-driven approach and long-term financial sustainability in NDB-led projects. The Prime Minister highlighted India's initiatives in agri-biotech, digital education access, and called for BRICS Science and Research Repository. On AI, he stressed on responsible governance and invited the BRICS partners for the AI Impact Summit that India will be hosting next year.
चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। सभी पात्र मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभी तक 1,69,00,000 से अधिक गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म अपलोड करने का काम भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 24 जून को जारी निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त तक जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में उन व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं।
In United States, the death toll from devastating flash floods in Texas has risen to 80, including 28 children. Search efforts continue for 11 missing girls and a counselor from Camp Mystic, a summer camp near the Guadalupe River, where torrential rains caused the river to overflow. The flash floods, which hit Friday, have severely impacted the Texas Hill Country, with Kerr Country, home to the camp, suffering the highest casualties.
उधर इसराइल और हमास के शिष्टमंडलों ने कतर में संघर्ष विराम पर बातचीत शुरू कर दी है। प्रस्तावित समझौते में 60 दिन का संघर्ष विराम, 10 इसराइली बंधकों की रिहाई, मृत 18 बंधकों का पार्थिव शरीर सौंपना और इसराइल की जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। बात अमरनाथ यात्रा की। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से आज तड़के 8,605 श्रद्धालुओं का छठा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। इनमें से 3,486 श्रद्धालु बालताल मार्ग से और 5,119 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से पावन गुफा की यात्रा करेंगे। और अब बात खेलों की। खेलों में कल का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। और अनिता जानती हैं, जहां एक ओर विश्व मुक्केबाजी में साक्षी, जैस्मिन और नुपुर ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वहीं पैरा तीरंदाजी में भी भारत के हरविंदर सिंह को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। लेकिन बात भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि कल का दिन वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 1967 के बाद भारत ने बर्मिंघम में पहली बार तिरंगा लहराया, जब कैप्टन शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने अंग्रेजों से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 336 रन से जीत लिया।
एजबेस्टन हमारा है, बंद मुठियां खोल दी, फजा में रंगत गोल दी। एजबेस्टन की ईगो तोड़ी, जीत से नाता जोड़ा है। भारत मां के वीरों ने इंग्लैंड को क्या फोड़ा है।
और दोस्तों, कल कई रिकॉर्ड बने और शुभम गिल को इस टेस्ट मैच में कुल 430 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और भारत की जीत पर शुभम ने कुछ यूं कहा।
काफ़ी खुशी है, इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हम मैच जीते हैं पहले तो, बिकॉज आप कितने भी रन कर लो, अगर टीम मैच नहीं जीतती है तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का मन में थोड़ा रहता है। तो इस बात की बहुत खुशी है, मेरी फर्स्ट विन एज ए कैप्टन एंड इस ग्राउंड पे आई जहाँ पे कभी इंडिया जीती नहीं थी, तो उस बात की भी काफ़ी खुशी है।
Moving on to next news in sports, the Asian Para Archery Championships in Beijing, Harvinder Singh, world's number one and Paralympic champion, won 2 gold medals yesterday, helping India secure second place in the medal standings behind China. India finished with 3 gold, 3 silver and 3 bronze medals. Harvinder Singh set a new competition record of 663 points in the recurve men's qualifying round. He won his first gold in the recurve open mixed team event with teammate Bhavna and followed it up with another gold in the recurve men's open title, completing a successful 3-medal haul. India women's compound team Sheetal Devi and Jyoti also won gold by defeating China's Lu Chang and Xing Chao.
तो कुल मिलाकर कल का दिन भारत के लिए खेलों की दुनिया में बहुत स्वर्णिम रहा। भारत ने एक के बाद एक कई सोने के तमगे अपनी झोली में डाले। और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का, तो चलते हैं अनीता के पास। अनीता, क्या कुछ है?
We are talking about Chennai Metro first. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin expressed sincere condolences on the death of a person who died in a cracker factory blast at Sivakasi in Viruddhanagar district yesterday. He announced compensation of 1 lakh rupees for the severely injured and 50,000 rupees for those who suffered minor injuries. 5 persons were injured in this incident and they are under treatment at various hospitals. Institutions run for the welfare of differently abled people have sought exemption from high power tariff. After the latest tariff revision, power charges for these institutions increased by 25 paise per unit and 6 per kilowatt. 786 NGOs registered under the Rights of Persons with Disabilities Act in the state and 393 government recognized special schools now have to pay higher bills despite financial constraints on providing basic amenities for the inmates free of cost. The Yellow Line, a vital 19-kilometre Namo Metro corridor from RV Road to Bommasandra via key junctions like Silk Road, was initially slated for 2021 launch. However, repeated delays, included the latest missed June 2025 deadline, have sparked mounting commuter frustration. Residents point to significant time and cost savings once the line becomes operational. On Saturday, hundreds of citizens led by Bengaluru South MP Tejasvi Surya staged a protest outside Lal Bagh main gate, demanding the line's immediate opening and accountability from BMRCL. Connecting major employment hubs, the yellow line is expected to significantly ease congestion along some of the city's most traffic-prone stretches. In a step towards realizing the dream of thousands of urban poor and middle-class families to own a home, the Karnataka Housing Board, KHB, has issued a preliminary notification for acquiring 315 acres of BM Kaval village near Kengiri. The large-scale residential project aims to provide houses and plots for the houseless and needy. The notification was issued in the last week of June. Strategically located off Mysuru Road and well connected via Nice Road and extended Purple Line of Namo Metro, BM Kaval has long held up untapped urban potential. With this initiative, the area is poised to become a hub for EWS, LIG and MIG housing, supported by strong infrastructure. Under the Land Acquisition Act, landowners and stakeholders have 60 days to file objections or suggestions. After Bengaluru, we are going over to Hyderabad. In Telangana, a tribal rights organization named Tudum Deba has launched a protest movement against government order for creation of a tiger corridor designated as Kumaram Bhim Tiger Conservation Reserve, linking Maharashtra's Tadoba Andheri Tiger Reserve with Telangana's Kaval Tiger Reserve. The organization has initiated awareness meetings in villages from Sunday and will continue till July 13th. Godam Ganesh, a leader of the Tudum Deba, said the order will affect 339 tribal villages across the Asifabad and Kagaz Nagar divisions of Asifabad district in the state. Meanwhile, with incidents of elephants, leopards and other wild animals straying into villages increasing across the state, the Forest Department has begun conducting special training sessions on tranquilizer gun operations for its frontline staff. A forest official said, while most staff had basic training during their induction, these refresher courses are meant to be honed to hone operational skills. And now for Metro City updates from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Naveen.
Baat karte hain sabse pehle Delhi ki. Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta ne kal Anand Vihar mein एक रक्तदान शिविर में भाग लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शिविर में उन्होंने दिल्लीवासियों की संवेदनशीलता, जागरूकता और सहयोग की भावना को अनुभव किया. रक्तदान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दिल्लीवासियों से रक्तदान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील भी की.
दिल्ली सरकार आने वाले समय में ब्लड डोनर्स की डायरेक्टरी ऐसा एक पूरा का पूरा अपना ऐप शुरू करेगी जिसमें जितने भी लोग ब्लड डोनेट करने के इच्छुक हैं उनका डाटा रहेगा, उनके फोन नंबर रहेंगे, ताकि किसी को भी जरूरत हो और वो ऐप पे संपर्क करे तो तुरंत उसको तीन नाम फोन नंबर जो उसके बिल्कुल नजदीक के हैं वो नंबर उसको मिल जाए. ऐसा एक लाइफ सेविंग ऐप हम लोग बनाने की प्रक्रिया में है और जल्द वो दिल्ली की जनता को समर्पित की जाएगी.
उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में 1300 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि देश की स्वास्थ्य नीति उपचारात्मक उपचार से निवारक उपचार की ओर बढ़ गई है.
बहुत ही खुशी का दिन भी है और खुशी का विषय भी है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है और एक तरीके से दिल्ली सरकार में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया तो लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद यह घड़ी आई है. इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए.
कहावत है, कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ आम के दाम की बात करनी होगी. वो इसलिए क्योंकि कल दिल्ली में आम महोत्सव संपन्न हुआ जिसमें विभिन्न वैरायटीज के कितनी तरह के आम जो थे रखे गए और उम्मीद है कि आपने भी इसका स्वाद जरूर लिया होगा. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पालिका सेवा अधिकारी संस्थान में आम महोत्सव का कल अंतिम दिन था. हमारे संवाददाता ने बताया कि इस महोत्सव में 500 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए जिनका लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया.
दो दिवसीय इस आम महोत्सव में शहरवासियों ने जमकर रसीले आमों का लुत्फ उठाया। इस आम महोत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र 2.5 किलो का आम था। महोत्सव में लोगों के लिए 500 से अधिक किस्मों के उपलब्ध आमों में लंगड़ा, दशहरी, सफेदा, आम्रपाली, गुलाब खास, मलिका और चौसा जैसे आम शामिल थे। मेले में आगंतुकों ने बिक्री के लिए उपलब्ध आम की किस्मों के पौधे के नमूने भी खरीदे। आगंतुकों और बच्चों को आकर्षित करने के लिए मेले में विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया था। NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने आज मेले का दौरा किया और वहां कुछ प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए। 2 सरकारी आम अनुसंधान संस्थान, 10 आम उत्पादक किसान और 25 आम विक्रेताओं ने बिक्री के लिए अपने स्टॉल लगाए थे। सकलैन अख्तर।
अनिता, आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा जाता। आम चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, लेकिन आम आम ही होता है। और जानते हैं कि अभी मैं इस महोत्सव में गया तो वहां पे इतने खूबसूरत आम देखने को मिले। कई बार ऐसा लगता है जिन आमों को हम अपनी ड्राइंग शीट पे बनाते थे ना बचपन में, वही गुलाबी, लाल, पीले, तरह तरह के आम वहां पे दिखाई दिए।
काइंड ऑफ वैरायटीज मैंगो हैज एज अ फ्रूट, आई थिंक इट बीट्स ऑल अदर फ्रूट्स इन द वैरायटी।
ट्रू ट्रू ट्रू। और जानते हैं वहां पे एक आम था अंगूरी आम, बिल्कुल अंगूर के साइज का छोटा सा आम, जो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, खाते तो न जाने क्या होता। और हाँ, और जैसे कि सकलेन की रिपोर्ट में भी बताया गया, करीब 2.5 किलो का एक आम। और कैन यू बिलीव कि वहां पे एक नाम ऐसा भी था, एक आम ऐसा था जिसका नाम था करेला आम। और वो बिल्कुल करेले की तरह था, हालांकि हमने उसका स्वाद नहीं चखा क्योंकि आम का स्वाद फिर खराब हो जाता। बहरहाल मुंबई का रुख करते हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय ने अर्जेंटीना के महावाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर मुंबई में टैंगो की भावना जश्न नामक एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में टैंगो मलहार नामक मराठी फीचर फिल्म पर प्रकाश डाला गया, जो भारतीय और अर्जेंटीना की सांस्कृतिक परंपराओं के बीच कलात्मक तालमेल को दर्शाती है। उधर मुंबई विश्वविद्यालय ने गैर मराठी भाषियों के लिए ऑनलाइन मराठी पाठ्यक्रम शुरू किया है। मुंबई विश्वविद्यालय के जर्मन विभाग ने गैर मराठी भाषियों के लिए इंटरैक्टिव मराठी कोर्स लेवल 1 का नया बैच शुरू किया है। कोलकाता की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने कोलकाता स्थित अलीपुर मौसम कार्यालय ने खबर दी है कि कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर बंगाल के जिलों में छिटपुट और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब वक्त हो चला है कि आज सवेरे के इस मैगजीन का एक और पन्ना पलटा जाए और आपको बताया जाए कि आपके शहर का मौसम क्या कहता है।
So Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and the maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपनी खिड़की का पर्दा हटा लीजिए और बाहर झांकिए, बादल आपका इंतजार कर रखे हैं। तापमान में थोड़ी सी राहत मिलेगी, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बहुत खूबसूरत मौसम है, ऐसा मौसम विभाग कहता है। बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। तापमान 25 डिग्री और 31 डिग्री के बीच वैरी करेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहने की उम्मीद है। यानी कुल मिला के देश का मौसम इस समय बहुत बहुत खूबसूरत है, आनंद उठाइए, लेकिन ऑफिस जरूर जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस से छुट्टी कर लें। हाँ, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको बहुत अच्छा मौसम मिलेगा, है ना अनिता
जी? बिल्कुल।
तो ये थे आज का मौसम कैसा रहेगा देश में। और अब आज के दिन का इतिहास।
Why is this day important? That is the 7th of July. In 1807, the first of the treaties of Tilsit was signed between France and Russia after Napoleon's victories over the Russians and the Prussians.
आज की तारीख वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आइजेक न्यूटन ने 1668 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की, जो इतिहास के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक की शैक्षिक यात्रा का प्रमाण है। और आज ही के दिन 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया था।
In the year 1896, the Lumiere brothers showcased 6 films at the Watson Hotel in Bombay, now Mumbai. This marked the birth of the Indian cinema that we know today. The Lumiere brothers were French cinematographers who arrived in India after having proved their cinematic excellence in Paris.
थोड़ा सा पीछे चले 1843 की बात करते हैं. इतालवी चिकित्सक, साइटोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता क्रेमिनो गोल्गी का आज जन्म हुआ था.
And in the year 1898, the U.S. Congress annexed Hawaii through a joint resolution signed by President William McKinley on this day in 1898, paving the way for the islands to become a territory and later the U.S. state in 1959.
1948 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना शुरू हुई थी.
And in the year 1978, the Solomon Islands became an independent nation.
1998 पंडित विश्वमोहन भट्ट को यूएन द्वारा प्रतिष्ठित अमेरिका के दशक के सबसे प्रशंसित व्यक्ति का सम्मान दिया गया था. और खेलों की बात करें तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आज ही के दिन 2013 में नोवाक जोकोविच को हराने के बाद एंडी मरे 1936 के बाद से ये खिताब जीतने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए थे.
And in a more recent history, after a dominating tournament showing the U.S. women's national team brought home a record 4th FIFA World Cup title, its second in a row, in the year 2019.
ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब बात उन व्यक्तियों की जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं और अपनी छाप छोड़ गए हैं.
We begin this segment by remembering Sir Arthur Conan Doyle. He passed away on this day. Born in 1859, was a British writer and physician. He created the character, guess who, Naveen? Sherlock Holmes, none Ooh. Other, in 1887 for A Study in Scarlet, the first of 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are milestones, and we all know, in the field of crime fiction.
और जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसा पाठक रहा हो जिसने शेरलॉक होम्स को ना पढ़ा हो
या देखा हो सीरीज. डॉयल वाज अ प्रोलिफिक राइटर. इन एडिशन टू होम स्टोरीज, हिज वर्क्स इंक्लूड फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन स्टोरीज अबाउट प्रोफेसर चैलेंजर, ह्यूमरस स्टोरीज अबाउट नेपोलियनिक सोल्जर ब्रिगेडियर जेरार्ड, एज वेल एज प्लेज, रोमांसेस, पोएट्री, नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स.
और अब बात उस संगीतकार की जिसने हिंदी फिल्मों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जिसके गीतों को हम आज तक भी नहीं भुला पाए हैं. स्वर्णिम युग के सारथी रहे अनिल बिस्वास, आज उनकी जयंती है. उन्होंने न केवल अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय, कलात्मक और मधुर बनाया, बल्कि कई गायक गायिकाओं को भी उन्होंने तराशा. एक बहुत खूबसूरत संगीत है, पहले वो सुनते हैं, फिर आप जान पाएंगे कि क्यों अनिल बिस्वास इतने कामयाब थे.
नैन लड़ गए हैं तो मनवा
उन्होंने कई गायक गायिकाओं को तराश कर हीरे की तरह पेश किया. और एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर न मचा. ये एक गीत था जो किस्मत फिल्म का गीत था. इसके अलावा अनिल विश्वास ने शास्त्रीय संगीत के उस्ताद होने के साथ साथ लोक संगीत में भी परांगत रहे. उनका जन्म आज ही के दिन 1914 में पूर्वी बंगाल के बारीसाल में हुआ था.
Today is the birthday of Sir Richard Starkey, or Ringo Starr, professionally known as Ringo Starr, and the English musician, songwriter and actor who achieved international fame as a drummer for none other than the Beatles. Starr occasionally sang lead vocals with the groups, usually for one song on each album, including some of them are so well known, Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends. He also wrote and sang the Beatles song Don't Pass Me By and Octopus's Garden. Is credited as co-writer of 4 others. As of July 2025, Starr is to date the longest living member of the band. I'm playing a snippet from With a Little Help from My Friends.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get high with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends.
Starr's playing style, which emphasized feel over technical virtuosity, influenced many drummers to reconsider their playing from a compositional perspective. He also influenced various modern drumming techniques such as matched grip, tuning the drums and using muffling devices on tonal rings. And he was appointed a Knight Bachelor in 2018 New Year Honours for services to music.
और अब बात उस खिलाड़ी की जिसके हाथों से शायद कभी कोई गेंद छूटती ही नहीं थी, और कहते हैं कि क्रिकेट में अगर वो खिलाड़ी न हो तो शायद सारी की सारी गेंदें बाउंड्री के पार हो जाएं। बात महेंद्र सिंह धोनी की, आज उनका जन्मदिन है। धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर वन का ताज हासिल किया। एक छोटे से इंटरव्यू सुनाते हैं और धोनी विकेट कीपिंग के बारे में क्या कहते हैं।
हमारे समय में देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ वीडियोस, ठीक है, टीवी पे मैचेस आते थे, बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं आता था, तो हम सबको गलतफहमी थी यार, मैं भी सचिन की तरह बैटिंग करता हूँ। देन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ माय वीडियो, आई वाज लाइक तू गली के जैसे ही बैटिंग करता है।
कि मेरा कीपिंग का टेक्निक अलग है, यू नो मैं कॉपी बुक नहीं हूँ, मैं उस तरीके से कीपिंग नहीं करता हूँ। 500 साल से कीपर वही करते आ रहे थे। यू नो क्रिकेट में बोलते हैं ना यू गिव, बेसिकली जब बॉल आ रहा है तो यू आर सपोज टू रिसीव द बॉल। मैंने बोला व्हाई डू यू नीड टू रिसीव द बॉल, हमारे जो ग्लव्स होते हैं उसमें रबर होता है, उसके अंदर रुई होती है, सो इट इज ऑलरेडी क्वाइट सॉफ्ट, तो उसके बाद आई डोंट नीड टू गिव, यू नो आई कैन एक्चुअली स्नैच द बॉल।
And today is the birth anniversary of the Bohemian Astro, Bohemian romantic composer, one of the leading conductors of his generation. We're talking of Gustav Mahler. The snippet of his music you heard earlier also. And as a composer, he acted as a bridge between the 19th century Austro-German tradition and the modernism of the early 20th century. While in his lifetime, his status as a conductor was established beyond question, his own music gained wide popularity only after periods of relative neglect, which included a ban on its performance in much of Europe during the Nazi era. I'm playing Adagietto by Gustav Mahler.
आज हिंदी जी ने जगत के मशहूर अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की पुण्यतिथि है। वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। आज जब आप इंटरनेट पर चेक करेंगे ना तो दिलीप कुमार के बारे में बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। एक खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम आपके लिए लेकर आए, आइए पहले उसे सुनते हैं।
तुमने शायद इस तिरंगे झंडे को गज भर का कपड़ा समझ रखा है डॉक्टर डैंग, लाखों शहीदों के खून से बना है, करोड़ों हिंदुस्तानियों का मस्तक है, छूने की कोशिश करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओगे।
दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता था। भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत से खूबसूरत गीत उन पर पिक्चराइज किए गए हैं, किसको छोड़ें किसको याद करें, लेकिन इन गीतों के साथ आज हम उन्हें याद कर रहे हैं।
नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
Today is the birthday of the Indian playback singer, live performer and composer. He sings songs with a musical style influenced by Indian folk music and Sufi music. We are talking about Kailash Kher, born on this day in 1973. Was inspired by classical musicians like Kumar Gandhar, Hridaynath Mangeshkar, Bheem Singh Joshi and Qawwali singer Nusrat Fateh Ali Khan. A snippet from one of his performances.
सन्नाटे टपकते जा रहे हैं।
आज सवेरे के आज के इस संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये संस्करण बेहद पसंद आया होगा और जिन खबरों को हमने आपको बताया उसे आप दिन भर अपने चर्चा में जरूर शामिल करेंगे। बहरहाल इजाजत दीजिए मुझे नवीन सक्सेना और मेरे साथ अनीता आनंद को।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।